الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और उसका कुर्ब तलाश करो और उसके रास्ते में जिहाद करो ताकि तुम फलाह पाओ। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, अगर इनके पास वो सब कुछ हो जो सारी जमीन में है और उसके बराबर और भी हो, ताकि वो कयामत के दिन अजाब से बचने के लिए फितिये में दे दें, तो भी वो इनसे कबूल नहीं किया जाएगा। उनके लिए बहुत दर्दनाक अजाब है। वो आग से निकलना चाहेंगे मगर वो इसमें से नहीं निकल सकेंगे और उनके लिए हमेशा रहने वाला अजाब। और तुम चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत के हाथ काट दिया करो, ये अल्लाह की तरफ से उस गुनाह की इबरतनाक सजा है जो इन्होंने किया, और अल्लाह ताला गालिब और खूब हिकमत वाला है। और फिर जो शख्स अपने गुनाह के बाद तौबा कर ले और अपनी इसलाह कर ले, तो बेशक अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। बेशक अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। क्या तुम्हें इल्म नहीं कि आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है? वो जिसे चाहता है अजाब देता है और जिसे चाहता है बख्श देता है, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। मौजूद माओ और प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का दौरे कुरान का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इंशाल्लाह अभी हमने जो आयतें तिलावत की हैं, आयत नंबर 35 से 40 तक जो मैंने तिलावत की है तर्जमे के साथ, इंशाल्लाह इसका मुख्तसर सा खाका मैं आपके सामने रखते हुए आगे बढ़ूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब। बहनों, अल्लाह ताला यहाँ पर ईमान वालों से खिताब करता है। इन दो आयतों में मैंने ये जो आयतें पढ़ी है 35 से 40 तक, इसको मैंने एक चैप्टर बनाया है। इसके बाद दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो इस पहले चैप्टर में अल्लाह ताला ईमान वालों से खिताब करके कहता है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो और उसका कुर्ब तलाश करो और उसके रास्ते में जिहाद करो ताकि तुम फलाह पाओ। यानी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया बंदे को कि अल्लाह से डरो और उसका कुर्ब तलाश करो। कुर्ब कैसे तलाश करते हैं अल्लाह का? यानी अल्लाह के करीब होने के लिए अल्लाह का वसीला जो तलाश किया जाता है वो कैसे किया जाता है? नेकियों के जरिए से। यानी अल्लाह ताला की तरफ, यानी उसके तरफ बढ़ना, उसके करीब होना, तो ये कुर्ब जो होता है, हम अल्लाह से मांगे भी, अल्लाह हमें तेरा कुर्ब नसीब फरमा, मांगे भी इंशाल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने का हुक्म आया ताकि तुम फलाह पाओ। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और उनके पास वो सब कुछ हो जो सारी जमीन में है, उसके बराबर और भी होता ताकि वो क़यामत के दिन उसे फिदिया में देकर बच जाना चाहते, लेकिन अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो फिदिया उनसे कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि क़यामत जब आ जाएगी तो उसके बाद जब लोगों का नामे अमल बंद हो जाएगा तो फिर उस वक्त उनका यानी फिदिया देने का कोई सवाल नहीं है, छूटने का अल्लाह के अजाब से कोई सवाल नहीं है। लिहाजा दुनिया में ही बंदे को चाहिए कि वो तौबा करे, इस्तग़फार करे और अल्लाह से, अल्लाह की जो आग अल्लाह ने काफिरों के लिए तैयार कर रखी है, उस आग से बचने की कोशिश करे। ये आग बहनों वो है जो अल्लाह ताला बता रहा है कि वो आग से निकलना चाहेंगे मगर नहीं निकल सकेंगे। यानी जहन्नमियों को आग 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 में जब जला जाएगा तो वो चाहेंगे कि आग से निकले मगर वो नहीं निकल सकेंगे और हमेशा के लिए उनका अजाब होगा। इसके बाद आयत नंबर 40 में, यानी 38 में अल्लाह ताला चोर का जो, यानी चोर मर्द या चोर औरत, यानी किसी औरत ने चोरी की या किसी मर्द ने चोरी की, तो उसकी सजा बताते हैं कि फक्तु अयदीहुमा, उनके हाथ काट दिए, काट दो। ये इस्लामी कानून है और ये ऐसा नहीं कि मतलब छोटी, इसका तो बहुत ज्यादा तफसीलात हैं। जैसे मतलब अगर कोई छोटी मोटी चोरी करता है, यानी मतलब है कि उसके लिए दीनार और दिरहम मुकरर किए गए कि इतना छोटा सा कि मतलब कोई यानी बड़ी चोरी नहीं करता, छोटी सी छोटा सा थोड़ा सा पैसा लेता है किसी का, तो फिर उसको दम भी करते हैं लेकिन उसका हाथ नहीं काटते। लेकिन बहुत जरा बड़ी चोरी करता है, यानी वो पैसों की बड़ी बड़ी चोरी करता है, हीरे जवाहरात सोना कुछ भी चुराया, तो फिर उसके लिए अल्लाह ताला बताते हैं कि उसके लिए बड़ा, यानी उसको उसके हाथ काट दो, चाहे मर्द हो या औरत हो। अब यहाँ पर और एक भी मसला है कि अगर कोई खाने पीने की चीजें चुराता है तो उसके लिए ये सजा नहीं है। हाँ, कोई बड़े बड़े, तो अब ये कानून जो इस्लामी कानून है बहनों, इसका कितना अच्छा फायदा होगा देखिए कि ये लोग जो इतने बड़े बड़े आज हमारे मुल्क में भी कितने बड़े बड़े गबन हो रहे हैं, यानी लाखों करोड़ों का लोग लेके मतलब डुबा देते हैं, भाग जाते हैं, तो फिर कोई पकड़ने वाला नहीं होता। लेकिन अगर इस्लामी कानून होता तो फिर लोग डर के मारे, यानी खाजी शरा को ये हुक्म होता ना कि वो हाथ काट दे, तो फिर लोग डर के मारे वो चोरियां नहीं करते, जो बड़े बड़े गबन नहीं करते, जो जैसे हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया में कि उतने बड़े बड़े गबन जो दूसरे ममालिक में कसरत से होते हैं, बड़ी बड़ी चोरियां, वैसे वहां पर नहीं होती, क्योंकि कानून वहां पर इस्लामी कानून है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल अल्लाह ताला इस्लामी कानून के बारे में आयत नंबर 40 में यहाँ पर 38 में यहाँ पर बताए, इसके बाद अल्लाह ताला बताए कि हाँ, फिर जो शख्स अपने गुनाह का इतराफ कर ले, तौबा कर ले, अपनी इसलाह कर ले, तो बेशक अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लेता है और अल्लाह बख्शने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमा रही कि क्या तुमको मालूम नहीं कि आसमान और जमीन की बादशाहत किसके लिए है? अल्लाह ही के लिए, जिसे चाहे अजाब दे और जिसे चाहे माफ कर दे, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इन आयतों के बाद यानी आयत नंबर 41 से 53 तक एक चैप्टर है पूरा, 41 से 53 तक एक पूरा चैप्टर है, जिसमें अल्लाह ताला मतलब क्या क्या इरशादात हैं अल्लाह सुब्हान व तआला के, वो देखते हैं कि आयत नंबर 41 से 53 तक ये क्या है बहनों। इसमें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमजदा हो जाते थे, दुखी हो जाते थे ऐसे लोगों को देख कर जो जबानी ईमान का दावा करते थे और उनका अमल उसके अपोजिट होता था, वो झूठ बोलते और अल्लाह के अहकामात में से जो मर्जी का होता उस पर अमल करते थे, और जो उनके मर्जी के खिलाफ होता था तो उसे छोड़ देते थे। तो उनके लिए अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में रुसवाई का अजाब रखा। वो झूठ के आदी थे और हराम खाने वाले थे। अल्लाह पाक ने उनसे फरमाया, क्या फरमाया कि अगरचे के, यानी मतलब ये कि वो इस किस्म की बुराइयां रखते थे और उनके पास हालांकि तौरात में हिदायत का रास्ता था, लेकिन वो लोग क्या करते थे, अपने पास तौरात रहने के बावजूद वहां पर उनके उलमा उसके जरिए से मामलात का फैसला करते थे, लेकिन बाज वक्त क्या करते थे, बाज लोग उस फैसले को नहीं मानते, वहां नहीं जाते थे और आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते कि हमारे मामलात में फैसले कर दो, हमारे मामले का फैसला करो। तो फिर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ए नबी, अगर ये आपके पास कोई मामला लेकर आए तो आपकी मर्जी है, आपके अख्तियार में है, अगर आप चाहे तो इसका फैसला करो या नहीं करो, अगर आप इनसे मुंह फेर लें तो फिर वो आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकेंगे, और अगर आप फैसला कर रहे हैं तो इंसाफ के साथ फैसला करो, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन, बताया अल्लाह ताला, अल्लाह मोहब्बत करता है इंसाफ करने वालों। इसके बाद यानी तौरात में जो खिसास का कानून है वो भी तौरात में था पहले, यानी जैसे कुरान में खिसास का कानून है ना, तो वैसे ही तौरात में भी अल्लाह पाक ने खिसास के कवानीन रखे थे, और अल्लाह पाक ने ईसा अलैहि सलाम को इंजील दी जो तौरात की तस्दीक करने वाली थी, और इंजील में मुत्तकियों के लिए हिदायत और नसीहत रखी थी और उनको किताब के मुताबिक फैसला करने को कहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी मनमानी की, ईसाइयों ने अपनी मनमानी की, यहां तक के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई और आप पर कुरान का नजूल हुआ, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया और आप पर कुरान का नजूल शुरू हुआ और कुरान के जरिए से लोगों के दरमियान फैसला करने का हुक्म हुआ। लेकिन अहले किताब ने क्या किया, फिर मुंह मोड़ लिया, अपनी किताब से भी मुंह मोड़े थे, फिर कुरान नाजिल हुआ तो उससे भी मुंह मोड़ लिए, तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा आप हक आ जाने के बाद उनके ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करना। अल्लाह अकबर, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बोल दे रहे हैं कि ए नबी, तुम हक आ जाने के बाद उनके ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करना और नेकियों में आगे बढ़ो। अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि फस्तबिकुल खैरात, तुम नेकियों में आगे बढ़ो, کیونکہ اللہ تعالی ہمیں کتاب کے ذریعے سے، احکامات کے ذریعے سے آزماتا ہے بہنوں کہ کون نیک عمل کرتا ہے، کون نیک عمل، کتاب دے کر اللہ تعالی آزما رہا ہے کہ کون نیک عمل کرتا ہے. پھر یعنی اس کے بعد آیتوں میں اللہ تعالیٰ دوبارہ یعنی یہود و نصارہ سے دوستی رکھنے سے منع کیے، بار بار آتی ہے بہنوں یہ آیت دوستی رکھنے کی. دوستی کسے کہتے ہیں؟ دوستی کسے کہتے ہیں جو ہم نوالا اور ہم پیالہ ہوتے ہیں، یعنی ایک ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یعنی محبت، دوستی جو ہوتی ہے وہ محبت، ویسی محبت، ویسی دوستی کفار سے رکھنا منع ہے. یہود ہو، نصارہ ہو، یا پھر مشرکین ہو، منافقین، حتیٰ کہ ان لوگوں سے ایسی دوستیاں رکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. ہاں کوئی اگر مجبوری کی حالت میں، جیسے مطلب ان کے شر سے بچنے کے لیے ہائے ہلو کی حد تک ان کو رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن پکی دوستیاں جیسے ہم نوالا ہم پیالہ ہوتے ہیں وہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ الگ الگ جگہ پر منع کیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان سے دوستی کرے گا اللہ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اور آیت 52 اور 53 میں دوبارہ ان منافقین کا ذکر آیا جو مسلمانوں کے گروہ میں رہتے ہوئے دوڑ دوڑ کر یہودیوں کے پاس جاتے تھے اور ان کی چاپلوسیاں کرتے تھے. دیکھیے منافقین کا جگہ جگہ ذکر آ رہا ہے، تو جو ذکر جہاں پر منافقین کے بارے میں آتا ہے تو وہ نفاق ان کا کیسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ الگ الگ طریقوں کا ان کا نفاق ہوتا ہے تو اللہ وہ بیان کرتے ہیں. وہ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے گروہ میں رہتے ہوئے جا جا کے یہودیوں سے ملتے تھے، ان سے دوستیاں رکھتے، ان کی چاپلوسی کرتے اور کہتے تھے کہ اگر ہم اگر مسلمان سے کچھ خطرہ ہوا، یہ لوگ کچھ ہمارے ساتھ شدت کرے اور کچھ بھی ایسے مطلب حرکت کرے تو ہم تمہارے پاس آ جائیں گے، نعوذ باللہ. اور اگر کیا ہوتا تھا، مومنوں کو کچھ فتح ملتی تو وہ اپنی منافقت پر پچھتاتے تھے، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ ہمارے ایمان کو نفاق سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی منافقوں کے کہہ رہا ہے کہ اعمال کو تباہ کر دے گا. اللہ اکبر. دیکھیں نا بہنوں کہ کیسے یعنی اللہ تعالیٰ کیسے وعید اپنی نازل کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نفاق کرتا ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد منافقت اختیار کرتا ہے، تو ایمان لا کے جو نیک عمل کرا تھا وہ نیک اعمال پورے اس کے ضائع ہو جائیں گے، اللہ سلب کر لے گا انہیں. اللہ اکبر. تو یہ تھی بہنوں آیت نمبر 51 سے، کون سے دیکھے تھے ہم لوگ، آیت نمبر 41 سے 53 تک. اس کے بعد والی آیتوں میں یعنی دوسرا چیپٹر میں نے باندھا ہے آیت نمبر 54 سے 71 تک. آیت نمبر 54 سے 71 تک یہاں پر کیا ہے، اہل ایمان سے خطاب ہے، اہل ایمان سے خطاب ہے. اور وہ خطاب کیسا ہے، یہود کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل ایمان سے خطاب کیا. آیت نمبر 54 سے 71 تک سورہ مائدہ. اس میں کیا ارشاد ہوا؟ سبحان اللہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کیا، ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب یہاں سے ایمان والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے. آیت بہت اہم ہے، غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کوئی اگر اللہ کے دین سے پھر جائے تو اللہ جلد ایسے لوگوں کو لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تم اگر ایمان لائے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم دین سے پھر گئے یعنی دین کے اوپر نہیں چلے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، لوگوں کو بدل دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان جو اپنے آپ کو ایمان والے بولتے ہیں اور دین پر نہیں چلتے تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ان کو ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ روئے زمین پہ سے، یعنی کفار سے مار کھلائے گا یا کسی بھی طریقے سے عذاب الہی میں آئیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرتے، اللہ ان سے محبت کرتا. اور ان کی صفت بتائی اللہ نے، وہ مومنوں پر نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے کی والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. ہم بولتے ہیں نا کہ کیسے بھی خیریت سے، ہاں اللہ کا فضل ہے، بولتے ہیں نا اللہ کا فضل. اور ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ کا فضل، ہم کیا سمجھتے کہ اللہ کا فضل وہ ہے، سمجھتے ہم کہ ہمارے پاس گھر ہو، مطلب ذاتی گھر رہنا، فلاں فلاں کیا ہے کہ مطلب گاڑیاں ہو، بنگلے ہوں ہمارے، بچے پورے سیٹلڈ ہو گئے، الحمدللہ بھائی اللہ کا فضل ہے ہم پورے سیٹ ہو گئے. हम क्या समझते हैं ये अल्लाह का फजल समझते हैं, नऊज़ु बिल्ला, बोलता ना ऐसा कैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल है, मस्त है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला बता रहा है कि अल्लाह का फजल ये है, क्या है कि अल्लाह का फजल ये है कि बंदे अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह उससे मोहब्बत करें, यानी एक बंदे पर अल्लाह का फजल है तो उसका क्या क्या है पॉइंट्स, कि बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है वो, और अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, वो मोमिनों पर नर्म होता है, काफिरों पर सख्त होता है, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, किसी की मलामत से ना डरने वाला, ये है जिस पर अल्लाह, जाली का फजलुल्लाह, अल्लाह ताला बता रहे हैं ये अल्लाह का फजल है। अब इसके बाद अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है, बेशक तुम्हारे दोस्त तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल और अहले ईमान है, अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह ताला खुली दोस्ती की ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्या फरमा रहा है कि बेशक तुम्हारे दोस्त तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वाले हैं, जो नमाज कायम करते, जकात देते, रुकू करते, और जो अल्लाह और उसके रसूल और अहले ईमान से सच्ची दोस्ती रखेगा वो अल्लाह का गिरोह है। अल्लाह के गिरोह को क्या कहा गया, हिज्बुल्लाह, वो अल्लाह का फइन्ना हिज्बुल्लाह, बेशक यही अल्लाह का गिरोह है, कौन, ईमान वाले, अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल और ईमान वाले जो एक दूसरे के दोस्त हैं, बोले अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा आतिना, अल्लाह ये दोस्ती हमको अता करे। अल्लाह ताला बता रही कि यूलाई का हिज्बुल्लाह, यही अल्लाह का गिरोह है और वही गालिब होगा, वही गालिब होगा। और ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ऐसे काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ जो तुम्हारे दीन को हंसी खेल बना लिए, अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो, जब तुम इन्हें नमाज की तरफ बुलाते हो तो वो हंसी और खेल बना लेते हैं। यानी क्या होता था कि जब अजान दी जाती तो ये यहूद नसारा, उनका तरीका अलग था ना इबादतों को बुलाने का, तो जब अजान दी जाती तो क्या करते थे, हंसी खिल्ली उड़ाते थे, मजाक करते थे, नऊज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये अखल नहीं रखते कि क्या कितनी बड़ी यानी अपने आप को जहन्नम में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं पता, अखल से काम नहीं ले रहे हो। तो अल्लाह ताला बताए कि कह दो अहले किताब, तुम हमसे सिर्फ इसलिए जिद कर रहे हो कि हम अल्लाह पर और उसकी किताबों पर ईमान लाए, बेशक तुम में से अक्सर नाफरमान हैं। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ऐ नबी कह दीजिए, क्या मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में ना बताऊं जो अल्लाह के नजदीक उनसे भी बदतर है। यानी अल्लाह ताला बदतरीन अशखास का भी कुरान में जिक्र करते हैं ताकि लोग अपने अमाल को महफूज कर ले, ऐसे खबीस अमाल से बच जाए। वो बदतर शख्स कौन है बता रही, वो शख्स है जिसने ये वो शख्स है कि अल्लाह ने उस पर लानत की, गजब नाजिल किया, बास को बंदर बना दिया, बास को बद जानवर बना दिया, बास को बंदर बना दिया और बास को बद जानवर बना दिया, क्योंकि उस शख्स ने शैतान की बंदगी की थी अल्लाह अकबर। क्या वजह बनी उन पर अजाब की, कि वो उन लोगों ने शैतान की बंदगी की थी, ये वही लोग हैं जो बदतर दर्जे के हैं और सीधी राह से सबसे ज्यादा गुमराह होते हैं। अल्लाह, हम जो दुआ करते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, मग़ज़ूब, जिस पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, अल्लाह की लानत भी उन पर, तो वो लोग कौन है जिन्होंने क्या किया, शैतान की, ताहूत की बंदगी की, ये वही लोग हैं जो बदतर दर्जे के हैं, सीधी राह से सब में ज्यादा ये भटके हुए हैं, सीधी राह से सब में ज्यादा ये भटके हुए हैं। अल्लाह पर अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है आगे कि जब ये तुम्हारे पास आते हैं तो अपने दिलों में कुफ्र लिए हुए आते हैं और कुफ्र के साथ जाते हैं, सिर्फ जुबानों से, जुबानी ईमान का दावा करते हैं, जुबानों से तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन कैसे हैं ये लोग, नऊज़ु बिल्लाह, कुफ्र साथ लेकर आते हैं, कुफ्र साथ लेकर जाते हैं। अफसोस है बहनों, अफसोस है उन लोगों पर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उनसे मुलाकात किए, लेकिन उन हिदायत नहीं लिए, हिदायत नहीं लिए। और अफसोस है हम पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन हम खोल कर नहीं देखते, पढ़ते नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने की कोशिश नहीं करते। ये हमारे लिए अफसोस का मुकाम है, उस वक्त वो उनके लिए अफसोस का मुकाम था कि वो कुफ्र को साथ लेकर जाते दिलों में और वो सिर्फ जबानी दावा करते थे ईमान का। और आज अफसोस है हम पर कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की अहादीस को अगर नहीं देखे, आपको समझने की कोशिश नहीं करे और अति और रसूल का मंशा पूरा नहीं करे, तो फिर हमारे लिए भी वईदें हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा हफ़्ज़ना, अल्लाह हमें महफूज रखे। अल्लाह ताला बता रही कि ये जो आते हैं आपके सामने ईमान के दावे करते,
لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ اور نبی آپ ان کو دیکھو گے، یہ گناہ زیادتی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، حرام کھانے میں جلدی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کے علماء ان کو حرام کھانے اور گناہ کی بات سے کیوں نہیں روکتے۔ اور نعوذ باللہ یہود کہتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، استغفر اللہ، کیا بولتے تھے؟ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے بولتے تھے، مغلولہ، یعنی وہ بولتے تھے خالد الیہود ید اللہ مغلولہ۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھا ہوا ہے، غلت ایدیہم، اللہ تعالیٰ بتا رہی ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ولعنوا، اور اللہ کی لعنت ہو ان پر، یہ الفاظ جو کہہ رہے ہیں اللہ نے ان کے اس بےہودہ بکواس کی وجہ سے ان پر لعنت کی، اور فرمایا کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے دونوں ہاتھ جو آئی ہے بہنوں بات، تو اس سے مراد ہم مطلب وہ نہیں سوچنا کیسے ہاتھ انسانی ہاتھ ہوں گے یا پھر کیسے ہوں گے وہ ہاتھ، وہ نہیں سوچنا ہے۔ یعنی یہ صحابہ سوال کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو آتا ہے قرآن میں کہ مطلب اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کا نفس، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کے پیر، پھر اللہ کے رسول اس سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے، اس کا جواب نہیں دیے، خاموش ہو گئے۔ تو پھر صحابہ کرام نے بھی اس کا سوال نہیں کیا، یعنی جو بات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی، اور وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک بھی نہیں پہنچائی۔ مطلب یہ متشابہات ہے، جیسا میں نے آپ کو اس سے پہلے کہا تھا نا کہ اس سے پہلے ہم لوگ تفسیر میں پڑھے تھے نا کہ مطلب قرآن میں دو قسم کی آیات، ایک محکمات ہے، ایک متشابہات، ایک محکمات، ایک متشابہات۔ تو محکمات ہیں جو احکامات ہیں، متشابہات یہ ایسی والی آیتیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا بول رہے ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، مطلب یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا دیے صرف دو ہاتھ، تو دو ہاتھ بس ختم۔ اب اس میں اور ایک جگہ قرآن میں آیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے لیے کوئی مثالیں نہیں ہیں۔ تو مثالیں نہیں بیان کرنا، اس میں تالیف بیان نہیں کرنا، ایسا ہو سکتے، ویسا ہو سکتے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ، وہ مرادیں نہیں لینا، بلکہ چپ بیٹھنا ہے، بس اللہ تعالیٰ جتنا بول دیے اتنا، خلاص، اب آگے نہیں کہ مطلب کیا ہوں گے ہاتھ بول تو کیسے ہاتھ ہوں گے، کیسا ہوں گا، نہیں، بلکہ بس اس چیز کے اوپر ایمان لا لینا ہے۔ پچھلے ہم پڑھے تھے نا کہ متشابہات کے پیچھے وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھی ہے، ورنہ ایمان والے تو کیا ہوتے، سنتے اور خاموش بیٹھ جاتے۔ تو